पिन रोए आंसू पार्ट 8। पूरा नावल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सके। शुक्रिया। वो एक बहुत रोशन और चमकीली सुबह थी जब मॉस पैदा हुआ। कितना प्यारा था वो, गोल मटोल सा, सेहतमंद। उनके घर में खुशियों की बारात उतर आई थी। अम्मा की खुशी के मारे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बाबा सारे खानदान में मिठाई तकसीम करवाते फिर रहे थे। समन माँ बनकर और भी पुरवकार और हसी लग रही थी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी, उसे बेटा दे दिया था जो शक्लो सूरत में बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा था। अम्मा ने मुआस को गोद में लेकर चूमते हुए ये साख्ता कहा, ये तो बिल्कुल इर्तजा का बचपन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पीछे की तरफ सफर कर गया है और इर्तजा फिर से मेरी गोद में आ गया है। उसने डरते डरते मौस को अपनी गोद में ले लिया था। जिंदगी में पहली मर्तबा इतने छोटे बच्चे को उठाया था। उसके छोटे छोटे और नाजुक से हाथ पांव उसे कंफ्यूज कर रहे थे। बड़ी एहतियात से उसने उसे गोद में लिया था। मामा उसके डरे हुए अंदाज पर हंस दी, फिर मुस्कुराते हुए वो उसे समझाने लगी कि इतने छोटे बच्चों को किस तरह उठाया जाता है। बहुत आहिस्तगी से उसने मौस का माथा चूमा तो वो एक बहुत ही मुख्तलिफ से एहसास से दोचार हुई। उसे यूं लगा जैसे इस नन्हे से वजूद में मोहब्बत की बहुत ताकतवर शुआएं निकल रही हैं और वो ताकतवर शुआएं सीधी उसके दिल पर पड़ रही हैं। उसका दिल चाहा वो उसे खूब प्यार करे। मोहब्बत का ये कैसा एहसास जागा था उसके दिल में? क्या इसलिए कि वो इर्तजा का बेटा था या फिर इसलिए कि वो समन का बेटा था, उसकी बहन का बेटा था? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो यूनिवर्सिटी से आकर बैग और दुपट्टा कमरे में उछालती सीधी समन के कमरे में आ गई थी। इब्तिदा अकीका के अगले रोज वापस चला गया था जबकि समन अभी यहीं थी। मौस जागा हुआ था और समन के पास लेटा हुआ था। वो खामोशी से लेटी उसे देखे जा रही थी। ऐसे टिकटिकी बांधकर क्यों देख रही हो मेरे भांजे को? क्या नजर लगाने का इरादा है? वो दूसरी तरफ से आकर बेड पर चढ़ गई और फौरन ही मौस को अपनी गोद में उठा लिया। समन जवाबन सिर्फ मुस्कुराई थी। तुम अभी इतनी खामोशी से लेटकर मौस को देखते हुए क्या सोच रही थी? बताऊंगी तो तुम हंसोगी मेरे पे, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं मौस के बारे में सोच रही थी सबा, वो जब चलना शुरू करेगा तो कैसा लगेगा, उसका वो छोटा सा पहला कदम कैसा होगा, वो थोड़ा सा चढ़कर लड़खड़ाने लगेगा तो मैं जल्दी से उसका हाथ थाम लूंगी, गिरने से बचा लूंगी, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता लेकर उसे चलते हुए उसका चलने का शौक पूरा करवाऊंगी। उसके तसव्वुरात की दुनिया सबा के बेसाख्ता कहके से एकदम खत्म हो गई। फिर वो और बड़ा होगा, स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। अपनी किसी खूबसूरत सी क्लास फेलो के साथ उसका एक जबरदस्त किस्म का अफेयर चलेगा। फिर तुम रवायती माओ की तरह विलन का किरदार अदा करोगी। ये शादी नहीं हो सकती का ऐलान करोगी। मैं ऐसे मौके पर अपने महर भांजे की हमायत करूंगी। फिर अगर तुम्हारी मुखालफत के बावजूद भी ये शादी हो गई, तो तुम अपनी बहू का जीना तो भर कर दोगी। समन, तुम जालिम और खतरनाक किस्म की सास बनकर कितनी प्यारी लगोगी ना। वो अपनी बातों को एंजॉय करते हुए बेतहाशा हंस रही थी। समन भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हद है सबा, मैं इतनी संजीदगी से बात कर रही थी और तुम कहां से कहां पहुंच गई। वो दोनों मिलकर हंस रही थी। सबा, ये सूप समन को दे आओ। मम्मा ने समन के लिए सूप तैयार करके उससे कहा था। वो खुद अब रात के खाने के लिए डैडी की पसंदीदा फ्रूट सलाद बनाने में मसरूफ थी। उसे कहना बगैर नखरे दिखाए सारा सूप पीना है। ट्रे हाथ में उठाकर किचन से निकलते हुए उसने मम्मा की बात सुनी और सर हिलाते हुए समन के कमरे में आ गई। वो समन के कमरे में आई तो समन किसी से फोन पर बातें कर रही थी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, सब ऐसे नखरे उठा रहे हैं मेरे जैसे मैं कोई VIP गेस्ट हूँ। अभी अभी सबा कमरे में आई है मेरे लिए ट्रे में कुछ लेकर, वो हंसते हुए कह रही थी। अभी एक हफ्ता तो हुआ है आपको गए हुए, रहे थोड़े दिन के लिए अच्छा है, मेरी भी अहमियत पता लगे आपको। मेरा फिलहाल वापसी का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उसने समन के सामने लाकर ट्रे रख दी, फिर एक नजर मॉस पर डाली। वो कॉट में लेटा बेखबर सो रहा था। अच्छा अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझे सूप पीना है। फिर खुदा हाफिज कहते हुए समन ने फोन बंद कर दिया। इर्तजा का फोन था, मुझसे वापस आने के लिए कह रहे थे। समन ने सूप का प्याला अपने हाथ में लेते हुए उससे कहा, देखो जरा मुझे घर की सजावट और शॉपिंग का लालच देकर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने बहुत खामोशी से समन के खुशी से झिलमिलाते हुए चेहरे की तरफ देखा। तुम सूप पियो समन, मामा ने कहा है सारा सूप पीना है तुम्हें। मैं किचन में जा रही हूँ, मामा डैडी के लिए फ्रूट सैलेड बना रही हैं, थोड़ी उनकी हेल्प करवाऊं। समन ने चम्मच मुंह में ले जाते हुए सर हिलाया, गोया उसे जाने की इजाजत दे दी। वो कमरे से निकलकर बाहर आ गई। समन, आज दोपहर में जब तुम मुझसे अपने ख्वाब शेयर कर रही थी तो मैं इन्हें इतने ही प्यार से सुन रही थी जितने प्यार से तुम उन्हें सुना रही थी। मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारे ख्वाबों से हसद महसूस नहीं हुआ था, वो मेरी बहन के ख्वाब थे। फिर तुमने मेरे ख्वाबों के साथ ऐसा क्यों किया समन? उजाड़ डाले ना तुमने मेरे वो सारे के सारे ख्वाब, वो ख्वाब जो मैं अपनी जिंदगी के 17 सालों तक देखती रही। मुझे ये बात याद आती है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे ख्वाब मुझसे छीन लिए, तो फिर मुझे तुमसे नफरत भी महसूस होती है और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लेने का भी दिल चाहता है। और जब तुम्हें अपनी बहन की नजर से देखती हूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम पर प्यार आता है। और इर्तजा गजनफर के साथ देखती हूँ कि इसके हवाले से देखती हूँ कि तुम उसकी महबूबा हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे की माँ हो, तो मुझे तुमसे नफरत होने लगती है। तुम्हें इसके साथ देखकर उसके बारे में इतने इस्तहाक के साथ बोलता देखकर आज भी मुझे उतनी ही तकलीफ होती है जितनी पहले हुआ करती थी, इतनी ही अजियत जितनी अव्वल रोज थी। वो मम्मा के पास किचन में आ गई थी। समन इर्तजा से आने के लिए मना करने के बावजूद 2 दिन बाद ही लाहौर चली गई थी। अम्मा समन के साथ गई थी। پہلے اگر انہیں صرف سمن کی فکر رہا کرتی تھی تو اب فکر کرنے کے لیے موز کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا گیا تھا۔ ارتضا کا لاہور میں کام ختم ہو گیا تھا، وہ لوگ کراچی واپس آ گئے۔ معاذ اب 11 ماہ کا ہو چکا تھا، اس کی پہلی سالگرہ آنے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا۔ بلا کا شریر ضدی تھا، وہ سب گھر والوں کو نچائے رکھتا تھا۔ اس کی شرارتوں اور شور شرابے سے گھر میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی تھی۔ وہ ایک اکیلا بچہ تھا اور لاڈ اٹھانے والے بہت۔ اماں خوش ہو کر اپنے بچوں کو دیکھتی تھی، ان کا خاندان مکمل ہو گیا تھا، صرف ظفر کی کمی تھی، باقی ان کے سب بچے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ عامر کی شادی ہو گئی پچھلے مہینے۔ معاذ کو کھچڑی کھلاتے ہوئے سمن نے اسے مخاطب کیا۔ وہ معاذ کے ساتھ بلاکس سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ کون عامر؟ اسے واقعی یاد نہیں تھا۔ زیادہ مت بنو، وہ فائزہ کا کزن۔ اب یہ مت کہنا کہ کون فائزہ، سمن نے کس قدر ناراض لہجے میں کہا۔ اچھا وہ، یاد آ گیا مجھے، بہت مبارک ہو۔ اس کے لیے جیسے اس بات میں کہیں افسوس کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ کس سے ہوئی اس کی شادی؟ وہ جو لڑکیاں اس کے پیچھے قطار لگائے کھڑی رہا کرتی تھی، انہی میں سے کسی ایک سے ہوئی یا کوئی اور؟ اپنی اسی مصروفیت کے ساتھ اس نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ کزن ہے اس کی، بہت پیاری ہے، فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے اس نے، اسلام آباد کی ہے۔ اسلام آباد میں ہوا تھا اس کا ولیمہ، ہم لوگ بھی گئے تھے، کتنا شاندار کپل تھا ان دونوں کا۔ ولیمے والے دن عامر گرے سوٹ میں بے حد ہینسم لگ رہا تھا۔ حالانکہ کسی سے جیلس ہونا اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس کی بیوی سے اتنی جیلسی ہو رہی تھی۔ سمن نے بہت دکھ بھرے انداز میں اسے تفصیلات سنائی۔ تم کیوں جیلس ہو رہی تھی؟ وہ ارتضا بھائی سے زیادہ ہینسم تو نہیں لگ رہا ہوگا۔ بلا وجہ اتراؤ مت، سب پتا ہے تمہیں، اتنا اچھا لگتا تھا عامر مجھے تمہارے لیے۔ فائزہ نے مجھ سے تمہارے اور عامر کے رشتے کے بارے میں ایک بار بات بھی کی تھی، جب تم لاہور ہم لوگوں کے پاس رہ کر واپس آ گئی تھی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ظاہر سی بات ہے عامر نے اسے یہ بات کرنے کو کہا ہوگا۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی، عامر فوراً اپنے پیرنٹس کو یہاں کراچی رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیتا۔ اتنا دل دکھا میرا اس کو منع کرتے ہوئے، مگر تم جو اتنی شدت کے ساتھ اس کے بارے میں ناپسندگی کا اظہار کرائی تھی، تو میں بات کیسے آگے بڑھا سکتی تھی۔ سمن نے بہت غصے سے اسے گھورتے ہوئے ساری بات بتائی۔ وہ سمن کی باتیں سن تو رہی تھی، مگر کسی خاص توجہ کے بغیر۔ سبا تم مجھے سچ سچ بتاؤ، عامر کو ناپسند کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تمہارا اس رات کا رد عمل میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ اتنی شدت سے تم نے اس بارے میں اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے تم کسی کو پسند کرتی ہو۔ تب اس بارے میں مزید بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارتضا سے بھی میری کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی، شاید میری طرح انہوں نے بھی اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کچھ دنوں بعد تم سے پوچھوں گی، لیکن پھر موز کے ہونے کے بعد تو میں ہر بات ہی بھول گئی۔ یہ تو پچھلے مہینے جو اس کے ولیمے کا کارڈ آیا اور پھر ہم لوگ وہاں گئے تو مجھے وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ وہ موز کو کھانا کھلا چکی تھی، نیپکن سے اس کا منہ صاف کرنے کے بعد اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی کوئی ہے جسے تم پسند کرتی ہو، یا پھر یہ محض میرا وہم ہے؟ دیکھو سچ سچ بتانا، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور پھر بعد میں مجھے सही बात कहीं और से पता चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुमसे इर्तजा के बारे में हर बात शेयर की थी ना, अभी भी करती हूँ। जब मैं तुम्हें अपनी हर बात बताती हूँ तो फिर ये मेरा भी हक है कि तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुम मुझे हर बात इसलिए बताती थी क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं? काश तुम्हारी तरह मेरी भी कोई लव स्टोरी होती, एक हैंडसम सा बंदा जो दिलो जान से मुझ पर फिदा हो रहा है और जिसे देखकर मेरा दिल तेज तेज धड़कना शुरू कर देता हो। पर अफसोस, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई हसीन और रंगीन कहानी नहीं। वो हंसने लगी। फिर वो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा था? वो हैंडसम बंदा दिलो जान से फिदा हो रहा था तुम पर। समय ने बात मुकम्मल की। तुम्हें सिडनी में अपना क्लास फेलो जो बहुत जीनियस था, बहुत हैंडसम भी था और तुम्हें बहुत पसंद करता था, क्यों अच्छा नहीं लगता था? और वो तुम्हारे अंकल का बेटा जो सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम लोगों के घर आया करता था, कितना क्वालिफाइड था, फिर क्यों तुमने उसे नापसंद किया? क्यों नहीं तुमने उसकी मोहब्बत कबूल कर ली थी समन? वो तेजी से बोली। समन लाजवाब हो जाने वाले अंदाज में खामोशी से देख रही थी। हर अच्छा शख्स जो मुझे पसंद भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि मैं भी उसे पसंद करने लगूं, और ये भी जरूरी नहीं है कि इस नापसंदगी के पीछे कोई ना कोई वजह भी हो। ऐसे ही मेरे पास भी उसे नापसंद करने की कोई वजह नहीं, सवाय इसके कि वो नहीं जिसे देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगे या शायद कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल जाए। समन के पास अब बहस करने के लिए कोई पॉइंट नहीं बचा था। मुआज की पहली सालगिरह आने में चंद दिन रह गए थे। घर में सबकी ख्वाहिश थी कि सालगिरह की तकरीब खूब शानदार तरीके से मुनक्किद की जाए। घर में कई दिन पहले से फंक्शन की तैयारियां शुरू हो गई थीं। समन को जफर के इस मौका पर दूर होने पर बहुत दुख था। वैसे फरमाइशे करके मौज की तस्वीरें और मूवी मंगवाते रहते हैं। देखो तो सही, मेरा भांजा कितना बड़ा हो गया है, और अब जब इसी लाडले भांजे की सालगिरह है तो उन्हें तोहफा भेजना तो दूर की बात, फोन पर भी मुबारकबाद देना याद नहीं रहा उन्हें। वो मामा से गिले शिकवे करने में मसरूफ थी। उन दोनों से कुछ फासले पर बैठा इर्तजा बज़ाहिर मौज के साथ खेलता हुआ इस गुफ्तगू को लापरवाही से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शोक सी मुस्कुराहट छुपी हुई थी। जफर ने अपने आने की इतला सिर्फ इसी को दी थी। यकीनन वो इस तरह अचानक पहुंचकर सबको सरप्राइज देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब वो मौज को समन की गोद में देखकर ये कहता हुआ कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ गाड़ी लेकर निकला, तो किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि वो जफर को लेने एयरपोर्ट जा रहा है। जफर को एकदम से अपने सामने देखकर सभी बहुत खुश हुए, मगर समन की खुशी तो देखने से ताल्लुक रखती थी। घर में पहले ही से खुशियों ने कदम जमा रखे थे। इन खुशियों और रौनकों को जफर की आमद ने कई गुना बढ़ा दिया था। वो तैयार होकर समन के कमरे में आई तो वो भी तैयार हो चुकी थी। पर्पल कलर की खूब काम से भरी हुई कीमती साड़ी पहने वो हमेशा से भी भड़कर हसीन लग रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, ये सेट इस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर आकर उसे देखते हुए उसने बेसाख्ता तारीफ की। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुमने बाल क्यों नहीं खोले? इन कपड़ों के साथ बाल खोलती तो बहुत अच्छा लगता। वो मौज को तैयार करने में मसरूफ थी। उसकी तैयारी को गौर से देखने के लिए उसने सर ऊपर उठाया। मम्मा ने मना कर दिया यार, उन्हें लगता है कि कहीं मेरे हसीन बालों को किसी की नजर ना लग जाए, उसने हंसते हुए उसे बताया। लोगों को और कोई काम है थोड़ी दुनिया में। वो बेचारे इतने फारिग हैं कि मेरे बालों की खूबसूरती पर और फिकर भी करेंगे और फिर इन्हें नजर भी लगाएंगे। मौज समन की गोद में उछल कूद कर रहा था। उसे समन की तैयारी की फिकर लाहक हुई, लेकिन खुद ही वो अपनी तैयारी के खराब हो जाने के बारे में जरा भी मुतफक्कर नहीं थी। समन, तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी। मेरा बेटा मेरी गोद में आकर खुश हो रहा है और मैं ये सोचकर उसे खुद से दूर कर दूं कि कहीं मेरी साड़ी ना खराब हो जाए, उसने मौस के हाथ चूमते हुए कहा। मौस के लिए वो हमेशा ऐसी ही दीवानगी दिखाती थी, मगर आज तो ये दीवानगी हमेशा से भी बढ़कर नजर आ रही थी। वो बहुत दिलचस्पी से माँ बेटे की मोहब्बत को देख रही थी। वो कभी उसके हाथ चूमती, कभी गाल, कभी माथा, और उसे जैसे माँ के सलाम से बहुत तस्कीन मिल रही थी। खूब खिलखिलाकर हंसते हुए वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। तुम तो ऐसे प्यार कर रही हो समन जैसे ये तुमसे कहीं दूर जाने वाला है, वो इसकी बेताबी और वालहाना अंदाज देखकर बोली। अल्लाह ना करे जो कभी मौज मुझसे दूर हो। समन को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं अपने बेटे को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, उसे हमेशा अपने पास रखूंगी, पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं भेजूंगी, वो उसे इसी अंदाज से प्यार करते हुए उससे बोली। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर इर्तजा अंदर आ गया। एक बहुत ही भरपूर निगाह उसने समन पर डाली। सबा की मौजूदगी की वजह से वो मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी निगाहों की सताइशी चमक बता रही थी कि वो उसे इस रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। इर्तजा, देखिए मौस शेरवानी और पजामे में बिल्कुल शहजादा लग रहा है, उसने इर्तजा की तवज्जो बेटे की तरफ मबजूल करवाई। वो उसके कहने से पहले ही मौस को देख चुका था। मुस्कुराते हुए उसने आगे बढ़कर उसके गाल चूमे। अपनी मामा को बताओ कि वो खुद भी बिल्कुल शहजादी लग रही हैं। वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। समन इन कमेंट्स पर बुरी तरह हैरान हो गई। सबा, तुम हम तीनों की एक तस्वीर तो खींचो जरा जल्दी से, फिर मैं केक लेने जाऊंगी, इसने साइड टेबल पर रखा कैमरा उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। वो दोनों एक साथ खड़े हो गए। मौस को समन ने गोद में उठा लिया। सबा, तस्वीर बहुत अच्छी आनी चाहिए, तुम्हारी फोटोग्राफी का इम्तिहान है आज, उसने कैमरा आंख से लगाया तो इर्तजा बोला। समन और इर्तजा के चेहरों पर तो मुस्कुराहट थी ही, मौज भी खूब खिलखिला रहा था। उसने तस्वीर खींच ली। इर्तजा साइड टेबल से गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाने लगा तो समन बोली, मैं भी चलूं आपके साथ, मुझे मामा के और अपने लिए गजरे खरीदने हैं। इर्तजा ने अस्पात में सर हिला दिया था। तुम भी आ जाओ सबा, अभी तो कोई मेहमान नहीं आया, फंक्शन शुरू होने में खासा वक्त है अभी। मौस को गोद में उठाकर इर्तजा के पीछे जाते हुए वो उससे बोली। सबा भी उन लोगों के साथ आ गई थी। मौस के लिए समन बेहतरीन से कम किसी चीज पर राजी नहीं होती थी। इर्तजा के साथ मिलकर उसने खूबसूरत सजावट करवाई थी और केक के लिए उसने खूब सारी बेकरीज छानी थी अपनी पसंद का केक बनवाने के लिए। तुम लोग बैठो, मैं केक लेकर आता हूँ, बेकरी के पास लाकर गाड़ी रोकते हुए वो उन लोगों से बोला। फिर वो अंदर चला गया और ये दोनों उसका इंतजार करने लगी। सबा, देखो वो सामने जो लड़का गजरे बेच रहा है, इसके गजरे कितने खूबसूरत हैं और बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। समन ने उसे वो लड़का दिखाया जो सिग्नल बंद होने पर हर गाड़ी के पास जाकर उसमें बैठे लोगों से अपने गजरे खरीदने के लिए कह रहा था। मैं इससे गजरे लेकर आती हूँ, इतने खूबसूरत गजरे किसी दुकान से मिलने मुश्किल हैं। इन लोगों की गाड़ी सर्विस रोड पर बेकरी के सामने पार्क हुई हुई थी और वो लड़का सामने रोड पर इधर से उधर भागता गजरे बेच रहा था। अभी इर्तजा भाई आ जाएंगे, तुम उनसे मंगवा लेना, खुद कहाँ जाओगी उसके पीछे। इसने उसे मना करना चाहा। दो मिनट लगेंगे यार, ये गई और ये आई। वो उसकी बात अनसुनी करके गाड़ी से उतर गई। वो खिड़की का शीशा नीचे करके इसकी तरफ देख रही थी। फुटपाथ से उतरकर रोड के किनारे पर खड़े होकर ही समन ने उस लड़के को आवाज दी थी। उसने समन की आवाज सुन ली थी। वो रोड के दूसरी तरफ था। वो समन की तरफ आने लगा, मगर उसके पहुंचने से पहले से इंतहाई तेज रफ्तार बस समन तक पहुंच गई। वो बस स्टॉप नहीं था। बस इस जगह लाकर रोकने का कोई जवाब नहीं था, और वो भी इतनी तेज रफ्तारी से। उसने समन को रोड पर गिरते हुए देखा। बस के टायर्स उसे कुचलते हुए कुछ दूर जाकर रुके थे। समन, उसके मुंह से चीख निकली थी। उसका बैग उसकी गोद में फिसलकर सीट पर गिर गया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर दीवानावार उसकी तरफ भागी। सिर्फ उसी ने ये मंजर नहीं देखा था। बेकरी से केक का डब्बा हाथ में लेकर निकलते हुए इर्तजा ने भी उसे गिरते और बस के नीचे आकर कुचले जाते देखा था। केक का डब्बा उसके हाथ से गिर गया। वो अंधाधुंध भागा। सभा से भी पहले वो उस तक पहुंच चुका था। उसके कहां कहां से खून बह रहा था पता नहीं चल रहा था, मगर वो पूरी की पूरी खून में नहाई हुई थी। समन, उठो, आंखें खोलो समन, देखो कुछ नहीं हुआ, अभी हम अस्पताल जाएंगे, वो पागलों की तरह उसे झिझोड़ रहा था। फिर उसे अपने बाजुओं पर उठाता हुआ तेजी से गाड़ी की तरफ आया। उसके जिस्म से बहने वाला बेतहाशा खून उसे रसा कर रहा था। उसकी कमीज और उसके हाथ समन के खून से पूरे पूरे भीग गए थे। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लटाकर उसने बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ाई थी। इस रफ्तार से उसने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। गाड़ी की पिछली सीट पर वो समन का सर अपनी गोद में रख कर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं, वो रोते हुए चला रही थी। समन, आंखें खोलो प्लीज, वो उसकी बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही इर्तजा भाई, इसे कहें ये आंखें खोले, वो अपने हवास खो रही थी। समन, प्लीज आंखें खोलो, देखो अभी हमें मौस की सालगिरह का फंक्शन करना है, घर पर मेहमान आना शुरू हो गए हैं। उसका हाथ समन के सीने पर बिल्कुल दिल के पास रखा था। उसे वहाँ खामोशी का एहसास क्यों हुआ था। घबरा कर उसने अपना हाथ वहाँ से उठा लिया। ये कुछ बोलती क्यों नहीं है, इसने अपने खून में भीगे हाथों को खौफजदा नजरों से देखा। उसकी गोद में सर रखे वो बिल्कुल खामोश थी, आंखें बंद किए जैसे अब कभी कुछ नहीं बोलेगी। वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। वो पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। डॉक्टर्स ने आकर समन को देखा। वो मुंतजिर थी कि अभी वो इसे ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, इन लोगों से कहेंगे कि फिक्र की कोई बात नहीं, मगर वो उसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। वो इन लोगों से फिक्र ना करे भी नहीं कह रहे थे। वो कह रहा है कि समन मर गई, वो रास्ते में मर चुकी थी। उसकी गोद में सर रखे रखे वो मर चुकी थी। इर्तजा ने खाली खाली निगाहों के साथ बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा था। वो उल्टे कदमों चलती समन और इर्तजा से बहुत दूर हट गई। फिर उसने इर्तजा को समन के ऊपर झुककर चीख कर रोते सुना। उसने बीच कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अभी वो आंखें खोलेगी तो सब ठीक होगा, समन उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही होगी। देखा कैसा डराया मैंने तुम लोगों को, उसके पास आकर कोई कुछ बोला तो था मगर वो समन नहीं थी। पता नहीं वो कौन था, शायद कोई नर्स थी। वो उसके हाथों में बहुत से सेवरात पकड़ा रही थी। हार, सोने के कंगन, अंगूठियां, सोने की चेन, पता नहीं क्या क्या चीजें। वो इन सब चीजों को ताजुब से देखने लगी। उसने डैडी और बाबा को आते हुए देखा तो भागती हुई इनके पास आ गई। डैडी, समर को यहाँ से ले चले, ये अस्पताल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स पता नहीं कैसे हैं, वो समन को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। डैडी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो जारो कितार रो रहे थे। बाबा ने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया, लेकिन बोले वो भी कुछ नहीं। चलो सबा, कोई इसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आया। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। गाड़ी उनके घर के पास आकर रुकी तो बाहर से ही उसे रोने की आवाजें सुनाई दी। उसे घर के अंदर कदम रखते हुए खौफ आया। वो गाड़ी से उतर गई, मगर घर के अंदर जाने के बजाय लॉन के आखिरी कोने में जाकर खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर भी रोने की बहुत तेज आवाजें उसके कानों में आ रही थी। उसने अपने कानों में उंगलियां डाली। थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियों से उतरकर मुख्तलिफ लोग उनके घर में आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लॉन में भी बहुत से लोग जमा होना शुरू हो गए। मामा फोन पर समन के एक्सीडेंट का सुनकर ही बेहोश हो गई थी। अम्मा गम से निढाल एक तरफ साकित बैठी थी, उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू गिर रहे थे और लबों पे मुसलसल एक ही जुमला था, समन ये वक्त तो मेरे जाने का था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी का जरा रहम नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि वो इस सदमे को सह भी सकती है या नहीं। डैडी एक तरफ बैठे बिलक बिलक कर रोते बेटी के आखिरी सफर की तैयारियां देख रहे थे। बाबा उनके पास बैठे हुए थे, उनके कंधे के गिर्द अपना हाथ रखकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते, वो खुद भी रोए चले जा रहे थे। इर्तजा जब्त की आखिरी हद पर पहुंचा खामोशी से लोगों के ताजीती जुमले सुन रहा था। उसके लब बिल्कुल खामोश थे और उसकी आंखें बिल्कुल वीरान और बंजर। जफर आज सुबह जिस बहन को खुश करने के लिए उसे सरप्राइज देने अचानक यहाँ पहुंचा था, इस वक्त इसी बहन को आंखें बंद करके गहरी नींद पे सोता देख रहा था। क्या तकदीर इतनी शफाक होती है। हंसते चेहरों से यूं लम्हा भर में मुस्कान छीन लेती है। क्या तकदीर उसे आज यहाँ इसलिए लाई थी कि वो बहन के मर जाने पर लोगों की हमदर्दाना नजरें देखे, ताजीती अल्फाज सुने और अपने माँ बाप और दादी को गम की इन अंतहाओं पर संभाले। ये सोचे कि उसे रोना नहीं, उसे सबको संभालना है। बाबा को, डैडी को, मम्मा को, दादी को, इर्तजा को और सबा को। लेकिन सबा वो कहाँ है। उसे अचानक सबा का ख्याल आया। मम्मा के पास डॉक्टर और अपनी चंद रिश्तेदार खवातीन को छोड़कर वो सबा की तलाश में आया। यहाँ वहाँ उसकी तलाश में नजरें दौड़ाता वो घर के पिछले हिस्से में आ गया। सबा उससे वहाँ नजर आ गई। उसे देखकर उसने सुकून का सांस लिया। वो खुद भी उसे आता देखकर उसके पास आ गई। जफर भाई, समन अपने और मामा के लिए गजरे लेने गई थी, उसे गजरों ने नहीं मौत ने बुलाया था। सबा, जफर की आंखों में आंसू आ गए। बेख्तियार उसने सबा को गले से लगा लिया। सबा, समन चली गई हमें छोड़कर। वो तड़प कर उसके बाजुओं में से निकली और भागती हुई वहीं पिछली तरफ से खुलने वाला दरवाजा खोल के घर के अंदर आ गई। जफर भी उसके पीछे अंदर आ गया। वहां बहुत से लोग थे, लाउंज लोगों से भरा हुआ था। उसने देखा जफर मामा को संभालने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उसे संभाली नहीं जा रही। उनकी चीखें घर की दीवारों को हिला रही थी और लाउंज के बीचों बीच वो लेटी हुई थी, आंखें बंद किए वो गहरी नींद सो रही थी। वो हल्की सी आहट से भी सोते सोते उठ जाया करती थी और आज इतने शोर में वो इतने सुकून से सो रही थी। तुम यही चाहती थी ना सबा, उसने समन की आवाज सुनी। तुम यहाँ पर क्यों आ गई समन, उसने अपनी रोती हुई आवाज सुनी। जब मैं नहीं तो समन भी क्यों, اسکی اپنی آواز اس کے ارد گرد گونج رہی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سمن بھی اس روز انس ماموں اور مومانی کے ساتھ اسی پلین میں ہوتی؟ کیا فرق پڑ جاتا اگر سمن بھی مر جاتی؟ وہ مر جاتی پھر یہ سب نہ ہوتا جو آج ہوا۔ وہ آج اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی ہے جسے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ کاش تم مر جاتی سمن، وہ آواز چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اس کے منہ سے چیخ نہیں نکل سکی تھی۔ وہاں جتنے لوگ رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، ان کی وہ سب آوازیں اس روتی ہوئی آواز کے آگے دب گئی تھی۔ اسے اب لاؤنج میں سوائے سمن کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں وہاں تنہا تھی۔ اسے اب کہیں پر بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے اپنی اس روتی ہوئی آواز کے۔ وہ سمن کے بالکل پاس آ گئی تھی، پھر اس نے دیکھا۔ سوتے سوتے ایک دم سمن نے اپنی آنکھیں کھول دی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میرا آنا برا لگا تھا نا، تم سوچتی تھی نا سمن یہاں پر کیوں آ گئی؟ اس کے آنے سے پہلے ہم سب کتنے خوش رہا کرتے تھے۔ میں جا رہی ہوں صبا، اب تم لوگ دوبارہ سے خوش رہنے لگو گے۔ میں تو بس اپنی زندگی کے چند آخری سال تم لوگوں کے ساتھ گزارنے آئی تھی، تم لوگوں کے درمیان تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اتنی سی بات پر تم اتنا دکھی ہوئی تھی؟ میں اس محبت سے دستبار ہو گئی ہوں، اب میں کبھی تمہاری بچپن کی محبت پر اپنا حق نہیں جتاؤں گی، تمہاری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس نے رونا چاہا مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکل سکا۔ وہ جس طرح بول نہیں سکتی تھی اسی طرح رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دیکھا چند لوگ سمن کے پاس آئے، وہ اسے وہاں سے اٹھانے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکنا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین کے اندر دس چکے تھے، وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی آنکھیں رونا ہی بھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے، آنسو بن کر بہنے والا پانی برف بن کر اس کی آنکھوں میں جم گیا تھا۔ میرے اللہ، کسی کی نظر کھا گئی میرے بچوں کی خوشیوں کو، میرے دل کو چین نہیں آتا مولا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، کیا میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی؟ اماں اپنا کلیجہ پیٹ پیٹ کر روئے چلی جا رہی تھی، ڈیڈی ان کے پاس بیٹھے سر جھکائے آنسو بہا رہے تھے۔ اماں آپ کی پیاری سمن کی خوشیوں کو میری نظر لگی ہے؟ ہاں اماں میری، میں اپنی بہن کو خوشیوں سے جل گئی تھی، میں اپنی بہن کی خوشیوں سے جل گئی تھی، کم ظرف اور حاسد ہو گئی تھی، اسے میری آہ لگی ہے۔ جس رات اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ کیا تھا، اس رات میں سارا وقت اپنی بہن کو بد دعائیں دیتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی تھی۔ میرے آنسو اور میری آہیں کھا گئیں اس کی خوشیوں کو، شاید اس رات میرے لیے در قبولیت کھلا ہوا تھا اور میں قبولیت کی گھڑی میں سے اور میں قبولیت کی گھڑی میں نے اپنی بہن کے لیے موت کی دعا مانگی تھی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسے اس کی سیج سے اٹھا کر کہیں غائب کر دوں اور خود اس کی جگہ وہاں بیٹھ جاؤں۔ آپ لوگوں کی دعائیں کام نہیں آئی تھی، آپ لوگوں کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں تھا جو میری بد دعاؤں میں تھا۔ دیکھیں وہ واقعی غائب ہو گئی ہے، اب مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ سمن تم یہاں پر کیوں آ گئی تھی؟ اس رات میری سب دعائیں عرش پر اٹھا لی گئی تھی، دیکھیں ان کی قبولیت میں 2 سال کا بھی عرصہ نہیں لگا۔ 15 دن باقی ہے نا ابھی اس کی شادی کی دوسری سالگرہ میں، کتنے تھوڑے سے دن کی خوشی ملی تھی اسے۔ میں اپنے ہر عمل اور ہر بات کا جواز ڈھونڈ کر لے آؤں مگر اس بات کا کیا جواز ڈھونڈوں؟ مزید ویڈیوز اور سٹوریز کے لیے हमारा चैनल यूनिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।